वह आयतुल लहुम, और एक और निशानी। अब ये तीन तीसरी बात आ गई ना, पहले हमने निशानी पढ़ी आयत 33 में, फिर निशानियां उसके बाद सारी आ गई, फिर उसके बाद 37 से और निशानियां अल्लाह ताला ने आसमानों में दिखाई, अब एक और निशानी है, तीसरा एक साइन है। देखिए अब आयत से आपको समझ आ रहा है ना, ये साइन हमें रिमाइंड कराना चाहिए, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह का कुर्ब देना चाहिए हमें, इन साइंस को, इन साइंस के जरिए हमें अल्लाह का कुर्ब मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा तो इस सुबह हमारी अकल में ही कोई मसला है, या फिर फितरत ही खराब हो गई, करप्ट हो गई है। वह आयतुल लहुम, और एक निशानी है इनके लिए, क्या निशानी है, अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून, हमने सवार किया इनकी औलाद को कश्ती में भरी हुई। आप देख लें किसकी बात की जाती, आयतुल्लाहुम, पहले हुम की जमीर, पहले सबसे पहले जो मुखातिब है वो तो कुरैश है, उनको फरमाया इनकी औलाद को हमने, इनकी नस्ल को यानी हमने सवार किया था, फिलफुल किल मशहूर, भरी हुई कश्ती में। अब ये कौन सी कश्ती की बात आ रही है, सूरह शोरा में भी 119 में अल्लाह ताला ने फरमाया है नू अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में कि हमने उसको और उसके जो साथी थे, उसके जो ईमान वाले उसके साथ थे, उनको निजात दी थी एक फुलकिल मशहून में, कि जो कश्ती थी भरी हुई। तो इससे दलील पता चलती है कि यहाँ पे भी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में बात हो रही है, कि अल्लाह ताला ने उनको सवार किया था और इनकी औलाद को, कुरैश की औलाद को सवार किया उसमें, उसमें कैसे सवार कर दिए कुरैश की औलाद को, इसलिए कि देखें हर इंसान के अंदर बीज होता है उसकी नस्ल का, जो उसका स्पर्म है वो उसका बीज है ना अगली नस्लों का। ये जो तुम्हारी औलाद है ना, ये आज इस वजह से है कि उनको अल्लाह ने किश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के साथियों को सवार किया था। ये बात समझ आ रही, थोड़ी सी तवज्जो ज्यादा चाहिए होगी आपकी। ये किस तरह से हो गया कि इनकी औलाद इसलिए है कि नूह अलैहिस्सलाम के साथियों को कश्ती में सवार किया था, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में आपको पता है कि जमीन पे कोई इंसान बाकी नहीं बचा था, सब को अल्लाह ताला ने तूफाने नूह में गर्क कर दिया सिवाय वो जो कश्ती नूह में सवार थे, नूह अलैहिस्सलाम और उनके जितने ईमान वाले साथी थे। अब वो ईमान वाले साथी ही हैं और नूह अलैहिस्सलाम की औलाद जिनसे फिर दोबारा दुनिया आबाद हुई, इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, दूसरे आदम, फिर पे वो एक तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी इंसानियत, उसके बाद सारी इंसानियत वाइप आउट हो गई, खत्म हो गई सिवाय जो कश्ती नूह में सवार थे, इसका मतलब उनकी उनकी नस्ल से ही, इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर इंसान है वो उनकी नस्ल से पैदा हुए, उन्हीं इंसानों की जो कश्ती नूह में थे। तो कहा गया कि इनकी औलाद को हमने सवार कराया क्योंकि उन लोगों को सवार कर दिया, उन्हीं के अंदर इनका बीज था ना, उन्हीं की नस्लों से आगे ये पैदा हुए, तो ये एहसान अल्लाह का समझो, ये देखो कितना बड़ा साइन है तुम्हारे लिए, कितनी बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए कि अल्लाह ताला ने कैसे तुम लोगों को सेव किया। वो लोग जो जिनको अल्लाह ने सवार कराया था, उनको अल्लाह ना सवार कराता वो भी डूब जाते तो तुम आज दुनिया में ना होते, क्योंकि तुम उन्हीं की जुर्रियत हो, उन्हीं की औलाद हो, उन्हीं की नस्लों में से। ये है अल्लाह ताला की निगहदाश्त इंसानियत के लिए, उनकी हिफाजत का इंतजाम, कि अल्लाह की शफकत और मेहरबानी इंसानियत के ऊपर कि इनको बचा लिया था, अल्लाह ताला ने ये एहसान याद दिलाया कि तुम आज इसलिए मौजूद हो कि तुम्हारे आबाओ अजदाद को उस तूफान नूह से बचा के अल्लाह ताला ने कश्ती में सवार कर दिया था, और ना सिर्फ उनको बचाया बल्कि उनके साथ उस वक्त जितने जानवर थे उनके जोड़े भी अल्लाह ताला ने सवार करा दिए, जिनको आज तुम इस्तेमाल करते हो, अगर वो अल्लाह ना सवार कराता तो इन ये तुम्हारे लिए होते ही ना ये वाले जानवर। तो ये अल्लाह ताला का कितनी बड़ी रहमत है तुम्हारे लिए, और ये कश्ती अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से अपनी नजरों के सामने बनवाई है, कुरान में आता है, फिर इसको भरवाया भी, फिलअप भी किया, मशहून थी ना, मशहून का मतलब एक पूरी तरह लोडेड थी, भरी हुई थी। और दूसरा माना अगर ले दिया जाए तो इंसान की नस्लों को कश्तियों में सवार कराया, देखिए इंसान कितने सारे इंसान हैं कश्तियों के अंदर अपने इधर से उधर जाते हैं, सामान भी भर भर के लेके जाते हैं, एक जनरल माना भी ले सकते हैं। अगर ज्यादा राजे माना यही है जो मैंने आपको बताया कि कश्ती नूह की तरफ यहाँ पे इशारा हो। वह खलक नाला हम मिसली ही मा यरकबून, और पैदा किया हमने इनके लिए मिम मिसली ही, इसके मिसल, किसके मिसल, ही की जमीर किस तरफ जा रही, कश्ती के, इस कश्ती के मिसल और भी चीजें पैदा की हमने इनके लिए जिसपे वो सवार होते हैं। कौन सी चीजें पैदा की अल्लाह ने कश्ती नूह के मिसल, उस जैसी, जैसी का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली वैसी हो, मतलब ये है कि सवारी की चीजें, जैसे कश्ती ने सवार किया था लोगों को, इस तरह और भी सवारी की चीजें जिन पे ये सवार होते हैं हमने पैदा की। और कौन सी चीजें सवारी की, गाड़ियां हैं, रेल है, जहाज हैं, और कई तरह की ट्रक हैं, तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने फरमाया हमने पैदा की, हम कहते तो हमने बनाई है ये तो। देखें एक बात याद रखें, हम बाज दफा ये सोचते हैं कि ये इंसानों ने बनाई, वो अल्लाह ने बनाई आसमान, बल्कि क्या है, आवाज सही आ रही है लाइव ब्रॉडकास्ट पे, बल्कि क्या है कि जितनी चीजें भी हैं जो हम आज टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जो है, जितनी चाहे रॉकेट हैं, चाहे सवारियां और हैं, जितनी चीजें भी, वो सब निस्बत उनकी अल्लाह ही की तरफ होती है। वह खलक ना, हमने पैदा किया, हम ये नहीं कह सकते ये हमने बनाई है, हमने कैसे बना ली, अकल हमें किसने दी, आइडिया किसने दिया, इसका मटेरियल किसने दिया, इसका डिजाइन कहां से हमने लिया, ये सारी चीजें, इसकी पावर, हमारे अंदर पावर ताकत कहां से आई इनको बनाने की, ये सब चीजें, इसके रिसोर्सेस, इसकी एबिलिटी, ये सब चीजें अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह ने दी हैं, तो हमने आज ये इनको जोड़ जोड़ के चीजों को तो कुछ चीजें बना ली हैं, हमने खुद नहीं बनाई। जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज है, इंसानों ने कोई फोन बना लिए, कंप्यूटर बना लिए, अब हम कहें ये हमने बनाए हैं, हमने तो चीजों को जोड़ा उस अकल के साथ जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई, हमारी, हमें एनर्जी अल्लाह ने दी, हमें दिमाग अल्लाह ने दिया, हमें डिजाइनिंग का समझ अल्लाह ने दी, हमें ये इल्म अल्लाह ने दिया, तब हमने एक चीज को जोड़ जाड़ के बना लिया। तो हम कोई भी चीज का नहीं कह सकते कि ये इंसान ने की, यहां पे हमें पता चलता है वह खलक ना से हमने पैदा किया, इसलिए हम बस जी ये तो इसमें तो, यानी हम समझते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ नहीं है, हमारी अपनी अकल है, हमारी अपनी अकल कहां से आ गई, इंसान ने जो तरक्की कर ली है, इंसान ने किधर से तरक्की की, अल्लाह ने दिया ना इल्म, तो ये सारी अल्लाह ताला की ही बनाई हुई है। अगर हमने बिजली पैदा कर दी, ये मशीनें बनाई है, ये भी अल्लाह ने ही अकल दी, अल्लाह ने ही पैदा की थी, अल्लाह ने हमें ताकत दी कि हमने ये चीजें मशीनों की बनाई और उनसे आगे गाड़ियां बनने लगी, और इनके लॉज अल्लाह ने हमें सिखाए कि इस तरह से लॉज हैं, और उनको उन लॉज में बांध दिया कि फिर आज हम फायदा उठा सकते हैं। अब अल्लाम अल इंसान मालम या अल्लाम, अल्लाह ताला ने तो फरमाया हमने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था, तो ये इस सब में अल्लाह ही की तरफ निस्बत करनी चाहिए, इनको अल्लाह ही की नेमतें समझना चाहिए। और ये भी सोच लें कि अगर अल्लाह ताला ये हमारे लिए ना बनाता तो फिर हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह सफर करते, हम यहां से देखें आप थोड़ा सा सफर कोई सोचें, वही बात जो हमने अभी की है कि जब हमारे पास नेमत नहीं होती ना तो तब उसका एहसास होता है, और एक दिन अल्लाह माफ करे गाड़ी खराब हो जाए, गाड़ी ना अवेलेबल हो, तब देखें हमारे तो ऐसे लगता है सारी जिंदगी बंद हो गई, एक दिन बिजली ना हमारे पास हो तो देखो सारा निजाम बंद ठप, कुछ समझ नहीं आती करें क्या, तो हम इतने ज्यादा मोहताज हैं, इसलिए हमें इन नेमतों का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया वह इन नशा नुगरिकुम, अगर हम चाहें तो हम गर्क कर दें इनको, ये बड़े बड़े जहाज जो चल रहे हैं पानियों के ऊपर, आप ये अंदाजा करें कि कितने कितने टन वो सामान लेकर जा रहे होते हैं, कितनी बड़ी इनके ऊपर यानी लोड की होती हैं चीजें, बल्कि एक जगह मैं पढ़ रही थी कि जो ऑयल है वो पता नहीं हजारों टन बहुत काफी है, मुझे फिगर नहीं याद, मगर हजारों टन ऑयल टैंकर्स जो होते हैं, ये बहरी जहाज शिप्स जो होते हैं, इनमें इतना टन ऑयल लेकर वो चलते हैं। अब सोच लें हजारों टन ऑयल है और वो किसके ऊपर है, सॉलिड जमीन पे नहीं है, पानी के ऊपर चल रहा है और डूब नहीं रहा, क्या ये अल्लाह की कुदरत नहीं है? या अल्लाह ताला की इंसान के ऊपर मेहरबानी नहीं है? तो ये भी एक मिरेकल है जिसको हम कभी सोचते ही नहीं। वैसे तो मौजों का इंसान इंतजार करता रहता है, क्या ये मौजा नहीं है? और फिर देखें कितनी कितना कार्गो लेके जहाज चलते हैं, कितने खुद वजनी होते हैं, पूरी पूरी ऐसे लगता है पूरा शहर चल रहा है। आपने बड़े बड़े ये वो क्रूजेस देखे होंगे, लगता है पूरा शहर है उसके अंदर ही सब कुछ उन्होंने बनाया। वो इतना वजनी है देख के अंदाजा होता है, और वो चल रहा है उसके ऊपर। वो पानी तो लिक्विड है, पानी तो सॉलिड है नहीं, कैसे उसके ऊपर चल रहा है? कहते जी फिजिक्स के लॉज है। वो लॉज किसने बनाए? खुद सोचो उन उन लॉज में इस पानी को किसने बांधा? अल्लाह ताला फरमाते हम चाहें तो गर्क कर दे इनको। ये नहीं अल्लाह का एहसान कि वो गर्क नहीं करता तुम्हें। हम चलाए फिरते हैं गाड़ियां, हम जहाजों में जाते हैं, हम शिप्स का सफर करते हैं, वो गिरते नहीं, क्रैश नहीं होते, डूबते नहीं, रोजाना के सफर कर रहे हैं। ये क्या अल्लाह का करम नहीं है? और ये ना समझो कि अल्लाह कर नहीं सकता, अल्लाह चाहे तो गर्क कर दे। फला सरीखा लहुम, तो नहीं कोई मददगार उनके लिए, वो फिर उनके कोई फरियाद सुनने वाला, उनकी चीखें सुनने वाला नहीं होगा। वला हुम युनकदून, और ना ही वो बचाए जा सकते हैं। फिर वो अल्लाह दबोना चाहे ना तो फिर चीखें मारें, चाहे कुछ कहें, फरियादें करें, कोई बचाने नहीं आएगा, कोई उनकी सदाएं नहीं सुनेगा। आप ये सोचेंगे जब ये टाइटैनिक डूबा है उसका, उन्होंने तो पहले उसने डूबना ही था, इसलिए उन्होंने कह दिया था कि इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट। जब भी कोई ये बात कह दे ना, इतना बड़ा दावा कर दे कि अब खुदा भी नहीं इसको डुबो सकता, तो समझ लो वो डूबेगा ही डूबेगा। उसने चैलेंज किया तो किया किसको? अब वो जब डूब रहा था तो उस वक्त रात का अंधेरा, और वो और उनकी लोगों मुसाफिरों की चीखें हैं, या कहीं भी कोई जहाज डूबता है और नहीं कोई इर्द गिर्द होता, तो एक अल्लाह ऊपर और नीचे वो, हर तरफ पानी, बस कौन है जो चीखें सुनने वाला है, कौन है जो बचाने के लिए आए? तो अल्लाह चाहे तो तुम्हें ऐसे डबो दे तो फिर तुम्हारे कोई मदद करने भी ना आए। अल्लाह अकबर। इल्ला रहमतम मिन्ना, मगर ये कि रहमत हो तुम्हारे रब की तरफ से, हमारी तरफ से रहमत हो तो फिर कोई बचा बच सकता है। एक्सेप्शन तब हो सकती है, बचत तब हो सकती है कि हम किसी के ऊपर रहम खा लें और किसी की फरियाद सुन लें, अदरवाइज को खुद बच नहीं सकता। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अपनी कुदरत दिखा रहे हैं कि देखो तुम सोचते हो कि हम चला रहे हैं शिप और हम गाड़ियां चला रहे हैं और वो, इसीलिए हमें देखिए दुआ सिखाई ना, सुबहान अल्लज़ी सखरा लना हादा, अल्लाह ने, अल्लाह वो जात, वो पाक जात जिसने इसको मेरे लिए मुसखर कर दिया। हम खुद नहीं इस काबिल थे कि हम इसके ऊपर कोई कंट्रोल कर सकते। ये हमें सिखाया गया कि तुम इस सबक को याद करके सवारी पे बैठा करो। मैं चलाती हुई हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं, हमने जहाज चला लिए, हमने शिप चला लिए, हमने ट्रेनें चला ली, ये हम नहीं है करने वाले। अल्लाह इतनी अब उसकी रहमत है कि वो हमें ये चीजें सलामती के साथ इनमें सवारियां करने दे रहा है, बावजूद इसके कि उसकी नाफरमानी की जाती है, शिर्क किया जाता है उसके साथ, इंसान गुनाह करता है, इसके बावजूद अल्लाह ताला की रहमत ही है कि वो फिर भी तुम्हें सलामती के साथ चलाए जा रहा है, चाहे तुम जहाजों में बैठो, चाहे तुम शिप्स में बैठो, तो चाहे किसी भी सवारी में। इंसान जो है ना, लेकिन इस चीज को इतना भूल जाता है। आज का ये भी एक शिर्क है ना कि पहले तो कुरैश क्या करते थे, बुतों को अल्लाह की सिफात दे देते थे कि अल्लाह की ये सिफात है, बुत भी हमारे ये करते हैं। तो आज का जो शिर्क है ना, वो इस तरह से है कि आप मीडिया पे उठा के देखते हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो क्या कहते हैं, मदर नेचर ने ऐसा कर दिया, कुछ एलिमेंट्स थे कि ऐसा हुआ, नेचर क्लेम्ड द लाइव्स, नेचर, नेचुरल डिस्ट्रक्शन, नेचर की ने स्ट्राइक किया। क्या होती है मदर नेचर? गॉड नहीं कहना आता, मदर नेचर या नेचर। ये तो वो अपने बुतों को अल्लाह की सिफात देते थे, इन्होंने और चीजों को दे दी। हमारे भी उर्दू में बोल देते हैं कि कुदरत का फैसला। कुदरत क्या चीज है? क्यों नहीं कहते अल्लाह का फैसला? कुदरत क्या चीज है? किस्मत की देवी मेहरबान हो गई, ये क्या चीज है? चाहे मुहावरतन भी बोलो ऐसे अल्फाज जिसमें किस्मत की देवी, कुदरत, हम नहीं बोल सकते। ना किस्मत की देवी कोई चीज होती है, ना कुदरत कोई चीज है, अल्लाह है। तो यहां पे देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये अल्लाह रहमतन मिन्ना, रहमतन भी क्या है नकिरा, यानी एक रहमत है ये अल्लाह की तरफ से सिर्फ, इसके अलावा तो बेशुमार अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर, ये तो सिर्फ एक झलक है, एक रहमत, रहमतन, सुभान अल्लाह। देखिए ना नकिरा लाने में भी आप देखेंगे यहां पे कोई वजह है, ये एक है अल्लाह की रहमत की वो तुम्हें चलने दे रहा है सलामती के साथ, और इसके अलावा बेशुमार उसकी रहमतें तुम रोज एंजॉय करते हो, कितनी दफा तुम उठते हो, बैठते हो, चलते हो, भागते हो, दौड़ते हो, गाड़ियां इस्तेमाल करते हो, जहाजों में बैठते हो, ट्रकों में बैठ, कुछ भी नहीं होता, ये इसलिए कि इसकी रहमत है। वह मतान इलाहीन, और लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, हमेशा तुम्हें सलामती मिली रहेगी, नहीं, ये एक एक हीन तक, एक फिक्स्ड वक्त तक फायदा है बस, ये एक मता है, मता थोड़ी देर का फायदा होता। तो ये चाहे सवारियां हैं, चाहे और जितनी चीजों को तुम एंजॉय करते हो, ये सारी बेनिफिट्स जो है ना तुम्हें लिमिटेड टाइम के लिए मिले हैं, सब टेम्पररी है। ये ना हो कि तुम इन्हीं में खो के अगले जहान को भूल जाओ, इन्हीं में फायदे उठाते उठाते ये भूल जाओ कि तुम आए कहां से और तुम्हें जाना कहां है। ये तो जरा देर का ही फायदा है, इसी में लॉस्ट ना हो जाना। वा इज़ा क़ीला लहुम इत्तक़ू, जब उनसे कहा जाता है डरो, इत्तक़ू डरने का माना सिर्फ नहीं है, इत्तक़ू से माना बचना भी होता है, यानी जब इंसान कहता है ना बी वेयर, मतलब होश करो, बी कॉन्शियस, अपने आप को बचाओ किससे, जो खतरा आ रहा है, क्यों, कौन सा, मां बहन ऐदी को ममा खल्फा हूं, जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे है, बच्चों सबक हासिल करो, इबरत हासिल करो, डरो इससे, क्या है सामने और पीछे, इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस की गई हैं। बास कहते हैं कि बहना ऐदी हिम से मुराद ये है कि जो भी पिछली अकवाम गुजरी हैं, उनके जो तबाहियां हुई, उनके ऊपर जो अजाब आए, उस अंजाम को देखो और तुम बचो इस बात से, तुम भी डर जाओ, अकल करो, होश करो, तुम क्या कर रहे हो ये। अच्छा, और ये भी कहा गया कि ये जो गुनाह तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे गुनाह हैं, इनकी से डरो कि इनकी वजह से कोई अजाब आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, होश करो, क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे आमाल देखो, इसके नताइज बहुत बुरे हैं, डर जाओ इस बात से। लेकिन जब इंसान कोई अमल करता है ना, तो उसके पीछे ही उसकी सजा आ रही होती है, सजा मतलब जो कहते हैं कि अमल के अंदर ही उसका अंजाम होता है, जैसे बीज के अंदर एक दरख्त होता है, पूरा लग रहा होता है आपको बीज, लेकिन उसके अंदर एक पूरा दरख्त है, अमल के अंदर ही उसका अंजाम है। इसी तरह ये भी कहा गया बहना आईदी है और ममा खल्फा कुम, इससे मुराद आईदी को ममा खल्फा कुम से मुराद ये दुनिया और आखरत के अजाब, दुनिया सामने और आखरत तुम्हारे पीछे, बहुत सारी यानी इंटरप्रिटेशन है इसकी, बहना आईदी को ममा खल्फा कुम, इसमें ये भी है कि आगे से जो अल्लाह की सजा आ रही है और जो पीछे से आ रही है, यानी दुनिया में भी और जो आखरत में भी सजाएं हैं, या पकड़ है अल्लाह की, और जो तुम आमाल यहां पे कर रहे हो रसूलों को झुटलाने के, और जो पहले लोगों ने किए आद और समूद को देख के, उनसे डर जाओ, यानी बैना ईदीकुम ममा खल्फकुम में ये सारी आ जाती हैं। तो तुम अल्लाह ताला कि जो आयात हैं इनको देख के कोई सबक हासिल करो, पिछली अकवाम को देख के सबक हासिल करो, डरो, पिछली उम्मतों पे अजाब आए थे तुमने देखा नहीं, और फिर तुम ये देखो जो तुम अमाल कर रहे हो उसके बाद तुम बचोगे कैसे, क्या इन अमाल को ले जा सकते हो अल्लाह के सामने, तो डरो इस बात से, लअल्लकुम तुरहमून, शायद के तुम पर रहम किया जाए, तुम रहम किए जाओ। शायद के, उम्मीद है, ताके, पॉसिबली, लाअल्ला का माना ये सारा हो सकता। यानी अगर तुम अपना जिस रास्ते पर गलत कार्यों के चल रहे हो, तुम तौबा कर लो, तुम वापस आ जाओ, पलट आओ, तो उम्मीद है कि फिर तुम पर रहम किया जाए। ये रास्ता छोड़ दो तब उम्मीद की जा सकती है, तब एक दरवाजा खुला हुआ है कि तुम पे अल्लाह रहम फरमा दे, तुम्हें माफ कर दे। इसे पता चला कि अल्लाह ताला अभी भी इनको चांस देता है कि, हालांकि अल्लाह को जरूरत नहीं है कि कोई किसी की ना इबादत की जरूरत है, ना किसी के पलटने की जरूरत है कि यह आ ही जाएगा तो कोई अल्लाह की खुदाई नहीं बढ़ जानी, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी उनको चांस देता है, लअल्लकुम तुरहमून, तुम अभी भी समझ जाओ, डर जाओ इस चीज से तो फिर तुम पर रहम किया जाए, ताकि तो फिर ही चांस है कि तुम पर रहम किया जाए। जो यानी रहम किस पे किया जाएगा, जो डर जाएगा, जो बचना चाहेगा, जो सबक सीखेगा इन चीजों से, जो पिछले लोगों की गुजरी है, जो आखरत की जवाबदेही है, जो अल्लाह के अजाब है, इनसे डर जाएगा, अपने आमाल को देख के डर जाएगा। जैसे हजरत उमर से किसी ने कहा, ए उमर अल्लाह से डर, हजरत उमर सुभान अल्लाह क्या सहाबी थे वो, कि उन्होंने अपना चेहरा जमीन पे रख दिया और मट्टी में अपने चेहरे को रोलने लगे और फरमाने लगे, हां उमर को वाकई अल्लाह से डरना चाहिए। ये नहीं कि मुझे किस बात का डर होना चाहिए, तुम डरो, हम किस बात पे डर, मेरे को गलत कर रहे, नहीं, तुम फरमाया कि तुम डरो जो आगे है, जो पीछे है, मैं पीछे दुनिया छोड़ा है, आगे आखरत आ रही है, आखरत में जवाब देना है, और पीछे क्या क्या कारनामे करके छोड़ के आए, मैं डरो इससे, आगे तुम्हारे क्या बड़ा दिन आने वाला है, इससे डरो। क्योंकि इंसान के अंदर जब ये चीज आएगी ना कि मुझे बचना है, मुझे डर है कि आगे मेरा अंजाम ना खराब हो जाए, फिर वो अपने अमल को दुरुस्त करता है। और यहां पे वह इजा कीला कहा गया, कहा जाता है इनको, क्यों ये कहा गया इजा कीला, वकाला क्यों नहीं कहा गया, और उसने कहा उनको, इसलिए कि जब मजहूल आया जाता है ना, तो उसमें फायदा क्या होता है कि तवज्जो सारी की सारी इस पे हो जाती है कि क्या कहा गया उनसे, ये नहीं तवज्जो थी किसने कहा, जिसने भी कहा, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाहे साहबा ने कहा, चाहे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कुछ भी किसी ने भी कहा है, इट डजंट मैटर जिसने भी कहा है, मगर जब भी इनसे कहा जाता है कि डरो अल्लाह से ताकि तुम पर रहम किया जाए, अब इसका कुछ जवाब भी होना चाहिए कि फिर वो, लेकिन वो ये कहते हुए वो अगली आयत में आ रहा है जवाब, अगली आयत में इसी चीज का जवाब हिडन है, इसलिए को उनका रिस्पांस इधर नहीं बताया गया, उनका जवाब नहीं बताया गया, क्योंकि उनका जवाब क्या था, वो मुंह मोड़ के चल पड़ते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह अकबर, वो तवज्जो ही नहीं करते। अल्लाह ताला ने फरमाया जब तुम डरोगे ना, मे बी फिर तुम अल्लाह की रहमत हासिल हो जाए, यानी ये अल्लाह ताला ने एक इंसेंटिव दिया, तुम हर कोई चाहता है ना मुझे अल्लाह की रहमत मिले, अजाब नहीं मिले, रहमत मिले, रहमत अगर चाहते हो तकवा डरो। तो हम थोड़ा सा अपने अंदर अगर चेंज लेकर आए, हम वापस आने की ठाने, अपने आप को फिक्स करने की ठाने, अल्लाह की तरफ मुड़ जाएं, तो अभी कुछ किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया अभी सिर्फ टर्न बैक किया है, तो अल्लाह ताला फरमाता है वो अपनी रहमत के साथ मुतवज्जे हो जाएगा। जब अल्लाह के लिए उम्मीद है का लफ्ज आ जाए ना, तो इसका मतलब वो हो ही जाएगी। وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ, नहीं आई उनके पास कोई निशानी निशानियों में से उनके रब की तरफ से, इल्ला कानु अन्हा मौरिदीन, मगर उनका रवैया क्या था, हमेशा एराज करना। यानी जब जब उनके पास कोई आयत आई, जब कोई निशानी आई, कोई साइंस दिखाए गए, चाहे कुरान में कोई आयत आ जाए वो भी एक आयत है, चाहे कोई आसमान में कोई यानी कायनात में कोई निशानियां वो उनको दिखाई जाए, चाहे अल्लाह के और भी बहुत सारे साइंस हैं, आप देखें ये भी साइन है जो जिंदगी में हाथ साथ आते हैं, ये भी साइंस है, किसी दिन कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी दिन कोई बीमारी हो गई, किसी दिन कोई, ये भी साइंस है जो अल्लाह की तरफ को बुलाते हैं इंसान को। जब कभी आए साइंस, और ये भी साइंस है ना, जो लॉज ऑफ साइंसेस हैं, ये बायो फिजिक्स में जो लॉज है, लॉज पढ़ते हैं आसमानों के सितारों की, इतनी बड़ी ये भाई, इसकी स्पीड ये है इतनी, इसकी स्पीड ये है, ये इतने ऑर्बिट में घूम रहा है, सब चीजें पढ़ते हैं, आखिर ये भी तो साइंसदानों ने निकाल निकाल के, ये सारी आप इसको पर करें सर्च तो आपको सारी मिल जाएंगे, किसी ने इस पे काम किया है ना। तो जब ये सारी आयात देखते हैं, ये तो पॉइंट आउट कर रही है कि कोई है जो इनको बनाने वाला, चलाने वाला, संभालने वाला, इनको ऐसे रखने वाला है। जब इनके पास आती है ये एराज करते करते, एराज का मतलब क्या होता है, ये मतलब मुंह मोड़ लेते हैं, बेरुखी, बेपरवाही, परवाह ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं करते, सीरियस ही नहीं लेते। अब देखें कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इनके दिमाग चलते हैं इसके अंदर, नहीं कि इसमें तवज्जो। चलो साइंटिस्ट को तो छोड़े, हम अपनी बात करते हैं, अल्लाह की इतनी निशानियां देखते हैं, उनके जरिए ईमान बढ़ना चाहिए, मगर देखते हैं बेरुखी। उन लोगों के बारे में भी आया, कितनी निशानियां तुम देखते हो, अगर चाहो तो एक ऊंट को देख के उससे निशानी, अल्लाह तआला ने कहा ना आफला अंदरूना इलल इबिल कैफा खुलिकत, एक इबिल को ही देख लो, एक ऊंट को देख लो, आसमान को देख लो कैसे खड़ा है, तुम पहाड़ों को देख लो, एक सहरा के बद्दू को बताया गया, तुम एक पहाड़ को देख लो कैसे नसब है जमीन पे, तुम इस जमीन को देख लो कैसे बिछी हुई है, आसमान को देखो कैसे खड़ा हुआ, तुम्हें समझ नहीं आती। फिर हमें बताया जा रहा है, कश्तियां देख लो, चांद सूरज देख लो, बहुत आप बनते हैं इल्म वाले, हम तो बहुत तरक्कियां हमने कर ली हैं, हमारे तो हम तो बड़ी आगे निकल चुके हैं, वो तो पुराने जमाने के लोग, इतनी तुम्हें समझ आ गई है, तुम्हें ये पता चल गया सीड कैसे डालते हैं, कैसे फूटता है, कैसे निकलता है, इसके अंदर क्या रिप्रोडक्शन होती है, कैसे ये आगे बढ़ता है, सब समझ आ गई। ये नहीं समझ आई कि कुछ किसने इसको बनाया, कौन कर रहा है ये सारा। साइन जो निशानी होती है उसका मकसद ही तो ये होता है कि वो बताती है उसका पता जिसकी तरफ से वो है, तो फिर भी नहीं समझ आती। आप देख लें ये साइन लगे होते हैं रोड्स के ऊपर, कोई बंदा ड्राइविंग कर रहा है, आगे लिखा हुआ है नो एंट्रेंस, नो एंट्री, ये इसका साइन लगा हुआ है। अब नो एंट्री का साइन लगा हुआ, गाड़ी चलाता लेके जा रहा, पुलिस रोकेगी तो क्या कहेगी, तुमने साइन नहीं देखा था? देखा तो था लेकिन मुझे, मैंने बस समझ नहीं आई मुझे, तो क्या उसको छोड़ देगा पुलिस वाला? हम इतने साइंस देखते हैं दिन और रात, क्या अल्लाह नहीं पूछेगा, मेरी निशानियां इतनी थी, इतनी मेरी आयात बिखरी हुई थी, तुमने किसी पे भी नहीं तवज्जो की, कोई निशानी नहीं तुम्हारे सामने आई कि तुम कोई तो अल्लाह की निशानी होगी। रोज हम किचन में खाना बनाते हैं, कितने इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, कोई चीज हमारे लिए निशानी नहीं बनती, एराज करते। ये भी एक ये एराज का तरीका काफरों का था कि वो जानते थे। एराज क्या होता है, एक तो होता है ना सिर्फ कुफर करना, एक एराज कि जानते बूझते हुए उस सब तवज्जो ही नहीं करनी, जानते बूझते हैं सब समझ है मैंने मानना ही नहीं, इंटेंशनली। तो अल्लाह ताला साइंस दिखाता है हमारी जिंदगियों में, हमारे इर्द गिर्द, कुरान में, हर जगह अल्लाह ने साइंस दिखाए हैं। वो इकबाल का शेर है ना इतना प्यारा, हम तो मायल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रोए मंजिल ही नहीं। ये अल्लाह ताला ने तो इतने अपनी यानी कुदरतों के, अपनी 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 तखलीक के, अपने कारनामे बिखेरे में हम मायल ही नहीं होते। अल्लाह ने तो सब दिखा दिया, हमें कोई तवज्जो ही नहीं है। देखिए इतनी बेरगबती, जब देखें कोई अपना ही भला खुद ना करना चाहे ना तो कोई उसको उसका भला नहीं कर सकता। अगर इंसान को अल्लाह बुला रहा है वो खुद ही नहीं तवज्जो करता तो फिर क्या किसी और। ये निशानियां सारी हमें बुला रही हैं अल्लाह की तरफ। आप देखें हम किसी को इनवाइट करें, मैं और आप, हमारे जैसे लोग, इंसान आम से लोग किसी को इन्वाइट करते हैं, दूसरा नखरा करता है, कहता मैंने तो आना नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो हमें कितना गुस्सा आता है। अच्छा छोड़ो इसको, नहीं है इसके पास टाइम हमारे लिए तो छोड़ो, हमें भी कोई जरूरत नहीं इसके पीछे जाने की। हम जो आम इंसान है ना, हमें भी इतनी गैरत आती है कि देखो इसने मुझे कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने नहीं आना, हम जैसे लोगों को गुस्सा आ जाता है, हम उसको नहीं बुलाते दोबारा। अल्लाह एक बंदे को बुलाए, उसके लिए पैगाम भेजे, अपने प्यारों को भेजे, अपने रसूलों को भेजे, उसको बुलाए और वो मुतवज्जो ही ना हो, मेरे पास टाइम ही नहीं, तो अल्लाह की नजरे करम क्यों हो उसके ऊपर इतनी बेरगबती, इतनी अदम तवज्जो ही। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जरा सा किसी का ऐसा इनकार, और खालिक के कायनात बुला रहा है, आओ हिदायत की तरफ, आओ सीधे रास्ते की तरफ, आओ। कितनी हमें दलीलें दिखा रहा है, कितनी हमें निशानियां दिखा रहा है, किस किस तरह हमें समझा रहा है, किस किस तरह वो हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। हाँ भाई, तवज्जो ही ना हो, इतनी इंसानियत है आज, नहीं हमारे पास नहीं टाइम इसके लिए। वो बुला रहा है बुलाने वाला, इनके पास टाइम नहीं है। वो इनसे पूछो क्या जब ये किसी अपने जैसे इंसान को बुलाएं और वो आगे से ये जवाब दे दे मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम्हें फिर कैसा लगता है? तुम अल्लाह के साथ ऐसा करते हो, मेरे पास टाइम नहीं। जिसको पूछ लो कहता मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं क्या करूं। जिसको पूछ लो अल्ला माशाल्लाह, वो होंगे अल्लाह के प्यारे जो के फौरन लबैक कहते हैं, फौरन आगे बढ़ते हैं। अक्सरियत का आपने भी देखा होगा यही हाल है। कोई निशानी रख दो ना, सुनते हैं एक से सुन कान से दूसरे से निकाल दिए, हम नहीं आ सकते इस तरह। ये एराज करते हैं और एराज भी अल्लाह की निशानियों के आगे। पिछली सबक में हमने पढ़ा था कि मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, और इसमें वहां पे क्या था कि कोई रसूल नहीं आता मगर ये उसका उस हंसी उड़ाते हैं। यहाँ वहां पे रसूलों की बात थी ना, तो रसूल का जिक्र है। यहाँ पे आयात की बात आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कोई आयत नहीं आती। इतनी समझाने के बावजूद इनका ये हाल है, आयतें इनके सामने बिखरी पड़ी हैं और इनका हाल यही है कि ये एराज ही करते रहते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे हम इस चीज को पढ़ के, या हसरतन अला इबाद। ये फ्रेज जो है ना, ये इतना जबरदस्त है ऐसे जैसे कि किसी ने यानी झंझोड़ दिया हो। पूरे हफ्ते मुझे ये वाली बात एक भूल नहीं पा रही थी, या हसरतन अला इबाद, कि अल्लाह ताला अफसोस करते हैं इंसानों के ऊपर। इंसानों तुम्हें क्या हो गया, कितना तुम्हें समझाया, कितने रसूल अल्लाह ने भेजे, कैसे कैसे तरीके तुम्हारी जिंदगी में हादसात इसलिए किए कि तुम अल्लाह की तरफ पलट आओ, तुम्हें नेमतें इसलिए दी कि तुम तभी पलट आओ नेमतों को देख के, तुम्हें अल्लाह ने निशानियां दिखा दी, तुम्हें अल्लाह ने खुशियां दे दी, तुम्हें अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों के हिसार में ले लिया, तब भी नहीं तुम्हें समझ आती। या हसरतन अल इबाद, तुम्हें अल्लाह ने मोहलतें दे दी, टाइम दिया, सोचने का टाइम दिया, सोचो सोचो सोचो, फिर भी नहीं। या हसरत अली बात, हसरत है लोगों पे, अफसोस है, कैसी है इंसानियत की, को क्या हो गया है। सब अकल समझ रखते हुए कहते हैं हमें सब समझ है, हमें ना कुछ बताओ, हमें सब समझ है। क्या समझ है कि जिसको अपने फ्यूचर की समझ नहीं, अपनी हमेशा की जिंदगी के लिए समझ ही नहीं है, वो कहते हम बड़े समझदार है। जो सिर्फ यही गर्क है और कुछ ये समझते हैं कि बस यही है और यही रहना है और हमने भी यही रहना है, ये समझ है, ये अकलमंदी है, या हसरतन अला इबाद। वाइदा कीला लहुम, और इनकी तो हालत ये हो गई है एराज की, इनकी इंतहा ये हो गई है, इनके अंदर चूंकि इतना तकब्बुर है कि وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, जब इनसे कहा जाता है ना, कौन कहता है, अब फिर अगेन ये नहीं बताया गया कौन कहता है, क्योंकि असल बात ये है कि तुम मैसेज को देखो क्या मैसेज है। जब इनसे कहा जाता है, कोई भी कह रहा हो, जब इनसे कहा जाता है अनफिको, खर्च करो, मिम्मा रज़क़कुम अल्लाह, जो अल्लाह ने तुमको रिस्क दिया, क्योंकि सहाबा कराम इन काफरों को कहते थे कि तुम ये जो गरीब मिस्कीन है इनके ऊपर खर्च करो, आखिर तुम्हारे ही अपने ही लोग हैं ना, जो अरे अपने कबीले के खानदान के इन लोग हैं, ये मिस्कीन है। قال الذين كفروا للذين آمنوا, कहते थे काफिर, कहते हैं काफिर उनको जो ईमान लाए, أنطعم من لو يشاء الله أطعمه, क्या हम उनको खिलाएं जिसको अगर अल्लाह चाहता तो खिला देता, हमें खिलाने की क्या जरूरत है। अल्लाह ने कोई कुछ समझ के इनको भूखा रखा है ना, इनको गरीब बनाया, तो अगर अल्लाह ने इनको देना होता तो अल्लाह खुद ना दे देता कि जो तुम हमें कह रहे हो। इनको ये बात नहीं समझ आती कि देखें अल्लाह ताला ने अगर किसी को नहीं दिया तो ये वजह नहीं है कि अल्लाह को वो बुरा लगता है या वो अल्लाह उससे नाराज है, ठीक है, बल्कि ये उसकी आजमाइश के लिए दिया कि वो सब्र करता है या नहीं। और अल्लाह ने जिसको दिया है, याद रखें, वो इसलिए नहीं दिया कि अल्लाह बड़ा खुश है उससे, अल्लाह उसे बड़ा, उसके कारनामों से, उसके अमाल से बड़ा राजी है इसलिए दिया हुआ, बल्कि उसकी भी आजमाइश है कि अब तुम इस पे खर्च करते हो कि नहीं, इसको हकीर तो नहीं समझते जो गरीब है, इसके लिए अपने जेब को खोलते हो कि नहीं, अपने हाथ को खोलते हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर तकब्बुर तो नहीं आ जाता तुम अपने आप को खुदा तो नहीं समझने लग जाते, ऊंचा तो नहीं, सुपीरियर तो नहीं समझते? ये समझ हमें नहीं आती और हम इस दुनिया में इस बात में इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि भाई जो अमीर है पता नहीं इसके अंदर अल्लाह ने बहुत ही इससे खुशी होगा जो इसको इतना दिया हुआ। ऐसा नहीं है। जैसे वो यहाँ पे कह रहे हैं अगर अल्लाह ने देना होता तो दे देता ना, हम क्यों दे? यानी उसका मतलब इनके अंदर कोई खराबी है जो इनको नहीं दिया, हम फिर क्यों दे? सूरह फजर में अल्लाह ताला ने इसी बात फअम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअक्रमहु वनअमहु फयकुलु रब्बी अक्रमन। जब इंसान के ऊपर अल्लाह ताला आजमाइश भेजता है, अल्लाह ताला ने इसको आजमाइश फरमाया है, आजमाइश भेजता है, उसके रिज्क को खोल देता है तो बड़ा खुश होता है, कहता है मेरे रब ने बड़ी इज्जत की है, मेरा बड़ा इकराम किया। अम्मा इज़ा मब्तलाहु फकदर अलैहि रिज़्कुहु फयकुलु रब्बी अहानन। और इब्तला फिर उसी को इब्तला कहा गया कि जब हम उसका रिज्क तंग करते हैं तो ये भी इब्तला है, ये भी आजमाइश है। जब हम उसको इस तरह से आजमाते हैं तो कहता है अल्लाह ने तो मुझे जलील कर दिया मेरे रब ने, हालांकि वो जानता नहीं है कि दोनों आजमाइशी हैं, दोनों जगह आजमाइश होती है। रिज्क की कमी भी आजमाइश है, रिज्क की कुशादगी भी आजमाइश है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया सारा ही दे दो, फरमाया अनफिकु मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। अल्लाह ने ही दिया है ना तुम्हें भी, ये सारा रिस्क अल्लाह का दिया हुआ ना, मिम्मा इसमें से थोड़ा सा खर्च कर दो। जकात क्या 2.5% है सिर्फ, सारा तो नहीं देने को कहा गया, वो भी सेविंग में से जो एक साल पड़ी रहे उसमें से। लेकिन ऐसे लोग दीन का एक तरह से मजाक उड़ाते हैं कि जब वो ऐसी बातें करते हैं, उनका वो ये नहीं कि वो सवाल कर रहे हैं क्या हम खिलाएं, या वो पूछ रहे हैं इनसे क्या हम खिला दें कि ना खिलाएं, ये सवाल नहीं है, ये एक एतराज है, ये एक एतराज होता है। बाज दफा आप देखते हैं कि लोग सवाल नहीं कर रहे होते, असल में वो एतराज कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के ऐसी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। आप देखेंगे यहां पे भी नहीं इनको जवाब दिया गया, ये बात की गई, उनकी बात कोट की गई, ये नहीं जवाब दिया गया कि नहीं नहीं तुम ऐसे करोगे तो ये है और ऐसे करो, नहीं कुछ भी नहीं। आप इसी किस्म की बातें आज भी लोग करते हैं, जैसे सूरह ज़ुखरुफ़ में भी आया था कि उनकी बात कही गई कि अगर रहमान ना चाहता तो हम शिरकी ना करते, यानी उसने ही चाहा तो फिर हमने शिरक किया ना। आज भी लोग कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो हमें हिदायत दे देता, यानी उसने नहीं चाहा तो हमारा हमें हिदायत नहीं दी, यानी हमारा क्या कसूर है, सारा कसूर तो अल्लाह का ही हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ठीक है, अल्लाह की मर्जी से सब होता है, उसके फैसले होते हैं, लेकिन उसी का ये फैसला है कि उसने इंसान को आजादी दी है कि तुम चाहे तो खर्च करो, चाहे तो ना करो, चाहे तो कुफर करो, चाहे तो ईमान लेकर आओ। ये अल्लाह का फैसला है, कोई अल्लाह के ऊपर ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने नहीं चाहा ना, अल्लाह की चाहत से सब कुछ होता है ना, तो अल्लाह ने नहीं चाहा तो फिर इसलिए नहीं हमें हिदायत मिली। यहां पे आप ये देखें कि उनको कहा गया खर्च करो, वो कह रहे हैं हमने खाना नहीं, हम खाना क्यों खिलाएं ऐसों को, तो ये दोनों में क्या है? इसलिए कि खाना खिलाना सबसे आसान खर्च करने का तरीका है। इंसान के घर में बचा हुआ खाना हो ना, वो भी किसी को दे सकता है, वो इतना सा भी नहीं काम करना चाहते तो और दूसरे इन्फाक के तरीके जो और बड़े बड़े हैं उन पे क्या खर्च करेंगे जब खाना तक नहीं खिला सकते, ये उनका हाल। ऐसे ये हाथों को बंद कर लेते हैं, यानी जो कुफर होता है ना वो फिर मखलूक खुदा के ऊपर भी नहीं वो रहम करते। तो फरमाया इन अंतुम इल्ला फी दलालिन मुबीन। ये कॉल उनका भी हो सकता है और अल्लाह ताला की तरफ से भी हो सकता है। अगर अल्लाह की तरफ से देखा जाए तो फरमाया अल्लाह ताला ने इसका जवाब कि तुम असल में खुद खुली गुमराही में हो और कुछ नहीं, तुम गुमराही में पड़ चुके, अब क्या तुम्हारा इलाज नहीं है। दूसरा इनका भी हो सकता है कि ये मोमिनों से कह रहे हैं कि तुम हमें खर्च करने को कहते हैं, हम इनको इनके ऊपर क्या खर्च करें, इनको क्या खिलाएं जिनको अल्लाह ने नहीं खिलाया, अगर अल्लाह चाहता तो इनको खिला देता और तुम तो बिल्कुल ही गुमराह हो गए, तुम तो बिल्कुल पागल हो जो ऐसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इनको आगे जवाब दिया गया, देखें वो बात कही गई, इनकी बात का नहीं उसमें कितने ही तुमने खिलाना है या क्या करना है, आखरत याद दिलाई गई। आगे इनकी एक और बात को बता के फिर आगे इनको ईमान बिल आखरत की तरफ तवज्जो कराई गई। वयकूलूना, और वो कहते हैं मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, कब आएगा वो वादा, कब ये जो तुम हमें धमकियां देते रहते हो, कयामत आ जानी है, ये हो जाएगा, ये कब वादा उन्हें, अगर तुम हो सच्चे। यानी तुम तो अपने आप को बड़े पाकबाज कहते हो, बड़े सच्चे कहते हो, तो इतने ही तुम सच्चे हो ना, तो फिर बताओ ना कब आएगी। 7 times कुरान में इनकी भी ये बात आई है, 7 times। हम पहले भी सूरह यूनुस में भी, अंबिया और इसमें सूरह नमल में ये पढ़ चुके हैं कि कब आएगी कयामत। तुम सच्चे हो तो लेकर आओ, सच्चे हो तो बताओ ना फिर। यानी उन्होंने एक काम ही पकड़ लिया था, बस एक उनके पास जिसको कहते ना एक ना शोशा छोड़ने का उनको एक तरीका मिल गया था कि इस तरह से वो मुसलमानों को की तहकीर करें, उनको नीचा दिखाएं। और हाँ, तुम तो बड़े कहते हो ना कि आमता नहीं, कब आएगी फिर, कब आ रही है बताओ। ये सवाल नहीं होता था, ये मजाक होता था। अब सोचिए ना, एक बस्ती में एक माइनॉरिटी रह रही है, हम जैसे अपने आप को सोचते हैं कि हम माइनॉरिटी है ना, सोचिए वो कितनी छोटी सी तादाद थी, कितनी माइनॉरिटी में थे मुसलमान, और उनको रात दिन ये इस तरह के ठट्ठे उनसे कर रहे हैं कि बताओ फिर कब आएगी। यहां से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमान जो दावा करते थे ना, उसमें ये अहम बात होती थी ईमान बिलाखिरा, जब भी तो वो हर वक्त ये इस तरह की बात के ऊपर आ जाते थे। अगर वो इसको छोड़ के और बातें करते तो फिर ये ना पूछते वो, इसका मतलब वो इस टॉपिक को लाते थे, वो ईमान बिलाखरा की बात करते थे। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि अगर आखरत पे ईमान हो जाए ना, जैसा ईमान जरूरी है, तो इंसान की जिंदगी बदल जाए। फिर वो ये ना कहे मैं क्यों उसको खिलाऊं जिसको अल्लाह ने नहीं खिलाया, तो मैं क्यों खिलाऊं। तो वो एक एक नेकी का मौका ढूंढता है, उसको फिर ये पता है पता नहीं कौन सी नेकी वहां पे मुझे काम आ जाए, वो भी संभाल संभाल के रखता है, ढूंढता है मौके, वो जाया नहीं करता। तो ये इसका मतलब वो इसको इसके ऊपर इतना जोर देते थे ईमान बिलाखरा पे। और अंबिया का तरीका ऐसा ही होता है कि वो जब दावा करते हैं ना, तो वो दुनियावी इतनी बातें नहीं करते कि दुनिया के तुम्हें ये फायदे हो जाएंगे, तुम्हारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे वही हो जाए, आखरत की बात करते हैं। लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ताकि तुम फलाह पा जाओ, फलाह। आज दावा क्या बन गया, कैसे दावा करते हैं, अगर आप देखें आज जो लोग वीडियोस भेजते हैं, कभी चीजें देखने को मिलती हैं कि इस्लाम आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, इस्लाम आपकी दुनिया को कितना अच्छा कर देगा, आपकी इकोनॉमी को, आपकी इसको, आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी बॉडी को, इस्लाम की जो इबादत के डिफरेंट तरीके हैं वो कैसे आपको अच्छा करते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें कि जिससे आपकी यहाँ की सारी चीजें अच्छी हो जाएं। देखें, इस्लाम हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम जहन्नुम से बच जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं, ठीक है, और हम दूसरों को भी इस्लाम की तरफ इसलिए बुलाते हैं कि वो भी जहन्नुम से बच जाएं। हम इसलिए नहीं इस्लाम लेकर आए कि दुनिया हमारी बहुत अच्छी है, वो ठीक है कि जब हम इस्लाम के ऊपर आएंगे हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, मगर हमारा पर्पज ये नहीं है और ना ही अंबिया का तरीका था। वो आखरत पे फोकस करते थे, खुद ब खुद दुनिया के सारे मैटर्स अच्छे होने शुरू हो जाते थे, मगर सहाबा क्या इसको सोच के आए कि उसके बाद हम हुक्मरानी करेंगे, वहां तक हम ऐसे करेंगे, यहां तक फिर हम अड़े अमीर हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे। देखिए, ये सारे बेनिफिट्स आपको खुद ब खुद मिलते हैं, दुनिया की बेहतरी खुद आ जाती है, मगर आज हमने क्या दावा बना लिया, लोगों नमाज की तरफ आओ क्योंकि नमाज में देखे ना कितनी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है, रोजा रखो क्योंकि रोजा कैंसर से बचाता है। अब आप ये बताएं कि ठीक है जिस्मानी फायदा है, मगर क्या हम इस वास्ते रोजा रखेंगे। अगर हमें पता चल जाए ना कि आखरत में हमें क्या मिलेगा रोजे का, अगर हमें उसका यकीन हो ना, तो ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमें ये बताने की जरूरत ही ना पड़े लोगों को कि लोगों ये करो क्योंकि तुम्हें ये फायदे मिल जाएंगे। ओ भाई, ये फायदे मिले या ना मिले, आई डोंट केयर, मेरे लिए यही फायदा बहुत है कि मेरा मेरे अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम जब मेरे पास आओगे तो जो अब मैं तुम्हें वहां पे जो इनाम दूंगा उसका तुम दुनिया में तस्वुर ही नहीं कर सकते, वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या मेरे लिए ये बात काफी नहीं है, अब मुझे कन्विंस करने की जरूरत अपने आप को पड़ रही है कि मैं इससे बच जाऊंगी, मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी, मैं इतने दिन रखूंगी तो मेरे लिए, वो हो या ना हो, मुझे उससे पता चले इन फायदों का या ना पता चले, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, मैंने रोजा रखना अल्लाह की खातिर है, मैंने रोजा इन फायदों के लिए नहीं रखना। हाँ, मगर इनकी बरकतें हैं, इन इबादात की भी बरकतें हैं कि मुझे ये भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है, मगर मेरे दिल के अंदर एक जर्रे बराबर भी ये ख्याल नहीं होना चाहिए, जर्रे बराबर भी, कि चलो रोजा रख लेती हूँ वैसे इससे सेहत भी बड़ी अच्छी हो जाती है। जर्रा बराबर भी मेरी नीयत के अंदर खोट नहीं आना चाहिए, खोट है, आपकी नीयत प्योर नहीं रहती। फिर अल्लाह ताला फरमाता है जिसने मेरे शरीक की खातिर कुछ किया तो मैं वो अमल उसके हवाले ही कर देता हूँ, अल्लाह नहीं कबूल करेगा। फिर जॉब ठीक है, तुम्हारी सेहतें तो अच्छी होती रहेंगी, रखो रोजे इसके लिए, नमाजें पढ़ो इसलिए कि एक्सरसाइज भी बड़ी अच्छी हो रही है, योगा भी तो ऐसा ही है ना, तो फिर एक्सरसाइज भी बड़ी अच्छी हो रही है, रुकू सजदे की वजह से आपकी ये सही होगा, ये मसल स्ट्रेच होंगे, ये ऐसे होगा, ये किसी और में नहीं होता, ये सिर्फ नमाज में होता है, चलो नमाज अब इस खातिर ही पढ़ लें। तो क्या किया फिर, इबादतों को भी हमने ये बना दिया कि आज उसके भी हम दुनियावी फवायद ढूंढ रहे हैं, इतना हम दुनिया पे फोकस है। और पहले लोगों को तो पता नहीं था कि इनसे ये सारे फायदे होते हैं, उन्होंने तो रखे रोजे भी, उन्होंने तो पढ़ी नमाजें भी, उन्होंने तो नहीं ये ऐसी कोई चीज ढूंढी इसके अंदर, उनके लिए तो बस ये ईमान काफी था कि जब मेरा अल्लाह इसकी जो अजर देगा मुझे वहां पे वो मेरे लिए काफी है। हमें कन्विंस अपने आप को करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, तब भी दुनिया के फायदे बताने पड़ रहे हैं, ये फायदा है, इसका ये फायदा, उसका ये फायदा, भी ना भी फायदे हों तो क्या फर्क पड़ गया। ये खालिसतन मेरे अल्लाह के लिए, खालिसतन, इसमें कोई कोई मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं सिवाय अल्लाह की रजा के। क्या जब हम ये चीजें देखते हैं या सुनते हैं तो क्या जहन में आ नहीं जाता, कहीं एक जहन के एक गोशे में भी कहीं ये बात आ गई, चलो ये काम कर लेती हूं इसलिए कि इससे ये भी फायदा हो जाएगा, क्या इखलास रह गया फिर नियत में। तो ये एक बात है कि जो वो कहते थे कि कब आएगा ये वादे का वक्त, इसलिए क्योंकि हर वक्त उनको आखरत के ऊपर फोकस किया जाता था, दुनिया पे नहीं फोकस किया जाता था, आखरत का बताया जाता था, लोगों आग से बच जाओगे, इस पे ईमान ले आओ, लोगों आग से बच जाओ, अपने आप को आग से बचा लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहला खिताब कर रहे हैं सफा पहाड़ी पे भी वो भी इसीलिए था। तो तुम देखते हो कि वहां से, मैं तुम्हें कहूं कि वहां से एक आर्मी आ रही है जो तुम्हारे पर हमला करती, मेरे पर यकीन करोगे? उनका हाँ करेंगे। तो फिर मैं तुम्हें बताता हूं ये कलमाए हक बोल लो तो बच जाओगे, निजात पालोगे। तो हम इसलिए मुसलमान है कि हम आग से बचे, हम इसलिए नहीं मुसलमान है कि हम हमारी वो ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, हमें ऐसा ये चीजें मिल जाएंगी, वो दुनिया में चीजें मिल जाएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को सही करें। दूसरी यहां में बात जा आगे देखते हैं, मा यंजुरूना इल्ला सैहतन वाहिदा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कहते हैं कब आएगी कयामत, कब आएगी, जब आएगी ना तो वो बस एक ही सैहा होगा, एक ही चीख होगी। वो कौन सी चीख है? वो सूर की आवाज है, ये सूर फूंका जाएगा एक ही दफा। अच्छा, अब कितनी दफा सूर फूंका जाएगा इसके बारे में डिफरेंट आ रहा है, ये भी आ रहा है कि दो दफा फूंका जाएगा, ये भी आ रहा है कि तीन दफा फूंका जाएगा। अच्छा, दो दफा जो फूंकने वाला है वो क्या है कि एक नुफा फूंका जाएगा तो उससे सब लोग मर जाएंगे, और दूसरा फूंका जाएगा तो उससे क्या होगा कि इंसान सारे के सारे जी उठेंगे। ये दो नुक्ते बताए जाते हैं। जो दूसरी राय है वो क्या कहते हैं कि नहीं, वो भी कुरान और हदीस से ही लेते हैं कि पहला नुफ्का फजा का है, यानी सारी मखलूक घबरा जाएगी, सहम जाएगी, जैसे जजा फजा कहते हैं ना, यानी सारी मखलूक जो होगी वो एक जैसे इंसान कहते हैं कि पैनिक हो जाएगी, भागने लगेगी, इंसान परेशान हो जाएंगे। और दूसरा नुफ़ा क्या होगा, जब वो फूका जाएगा तो फिर इंसानों को मौत आ जाएगी, और तीसरे नुफ़े पे उनको दोबारा खड़ा किया जाएगा। और ये तीन नुफ़े भी बताए जाते हैं, और यानी आखरत की जिंदगी जो है ना वो तो तीसरे सूर फूंकने से फिर शुरू होगी। अल्लाह अकबर। तो ये तीन नुस्खे बताए जाते हैं और यहां पे एक ही नुस्खा होगा। इसकी कौन सी नुस्खे की यहां पे बात की जा रही है? ये वो जिससे मौत आ जाएगी, ये मौत तारी हो जाएगी, यानी बस एक आवाज होगी जिससे सब खत्म हो जाएंगे। ये जो सारा शोर मचा हुआ है, हंगामे है, ये सब खामोशी हो जाएगी। फइन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, एक जजरा होगा, एक ही बस डांट होगी। और वहुम यखसिमून, ताखुज़ुहुम, जो पकड़ लेगी उनको, वहुम यखसिमून, और वो उस वक्त झगड़ रहे होंगे। यख्तसिमून था मैंने आपको बताया ना, यखसिमून के क्यों आ गया, इसलिए कि ये मुसलसल एक दूसरे के साथ झगड़ना, बहसें करना, ये इसमें लगे होंगे। यानी लोगों का हाल क्या होगा, किस हालत में लोगों के ऊपर ये वक्त आएगा कयामत का, कि जिस वक्त लोग झगड़ों में पड़े में, और तबरी फरमाते हैं कि कौन से झगड़े, कि आखरत के बारे में बहसें कर रहे होंगे कि आखरत क्या, और देखो कयामत की बड़ी बातें करते थे, जन्नत जहन्नुम की बड़ी बातें करते थे, सब बेकार बातें, ऐसी फजूल बातें, कुछ नहीं थी, है कुछ नहीं हुआ, इस तरह की बातें कर रहे होंगे कि उसी वक्त कयामत आ जाएगी। और इब्ने कसीर कहते हैं कि इसका मतलब है कि झगड़े कर रहे होंगे कि यानी ऐसे ही अपने मामलात में लगे होंगे, अपने रोजमर्रा जिंदगी के झगड़े, जैसे इंसान होता है, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब अपने अपने झगड़ों में, जैसे कि हदीस में आता है कि लोग रास्तों में चल रहे होंगे, बाजारों में खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे, अपनी महफिलों में बैठे बातचीत कर रहे होंगे, यानी उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि आज है कयामत, बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, नो क्लू, क्लूलेस होंगे। ऐसे में यकायक अचानक से, यानी सूर की हिला देने वाली आवाज बुलंद होगी। कोई कपड़ा खरीद रहा होगा तो कपड़ा फैला का फैला रह जाएगा, उसे लपेटने तक का की भी मोहलत नहीं मिलेगी। यानी देखिए आप वो कपड़ा आपको दिखाते ना, तो ऐसे कपड़े को फैलाते हैं, उस अभी जब उस वो फैलाएगा, सूर की आवाज आई, उसको इतना भी नहीं टाइम मिलेगा, कपड़ा लपेट के ही रखते, फिर वो खत्म हो जाएगा। कोई अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए हौज ठीक कर रहा होगा और उसको भरने में लगा होगा, और एकदम अचानक से सूर की आवाज, यानी आप सोचिए अगर आज कयामत आनी होती तो उसने कोई अपना हौज ठीक करना था, नहीं करना था ना, इसका मतलब उसको कोई आइडिया नहीं है। कोई जानवर का दूध धोने में लगा होगा, अल्लाह अकबर, कि और धोकर एक घूंट हलक से उतारने भी ना पाएगा, दूध धोया अभी जानवर का और अभी एक घूंट भी हलक से नहीं उतारा, कि वहीं पे खत्म हो जाएगा। कोई खाने का इरादा करेगा और निवाला, निवाला उठाया उसने, देखें मुंह तक लेके जाने लगा है, इंस्टेंटली अभी इसी वक्त सूर फूंका जाएगा, वो वहीं ढेर हो जाएगा, उसको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि निवाले को मुंह में डाल ले, यहां तक भी टाइम नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम में फरमाया, वो तो इन्हें टाल रहा है उस दिन तक के लिए जब ये हाल होगा कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, सार उठाए भागे चले जा रहे होंगे और उनकी नजरें ऊपर की जानिब जमी होंगी और दिल उड़े जा रहे होंगे। यानी कयामत के दिन ये वो दिन है जिस तक के लिए अल्लाह ताला ने इनको मोहलत दी हुई है, वो दिन बहुत मुश्किल दिन है। एक दफा ही सूर फूंका जाएगा, लोग डेली के अपने काम काज में मशगूल होंगे कि अल्लाह ताला हुक्म दे देंगे इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का, और वहीं लोग इधर उधर गिरने लगेंगे, इतनी श्रिल आवाज होगी उसकी, इस कदर तेज आवाज होगी, किसी को टाइम ही नहीं मिलेगा कि कुछ कह ले, कुछ सुन ले, कुछ बात कर ले, कुछ नहीं। लोग झगड़ों में पड़े हुए हैं, उनको अंदाजा ही नहीं कि आज है कयामत का दिन। ये सोचे कि कितनी वो खौफनाक आवाज होगी कि उस आवाज से ही लोग ढेर हो रहे हैं। अल्लाहू अकबर। और अल्लाह ताला ने फरमाया, फला यस्ततीउना तौसियतन, ना इस्ततात रख सकेंगे कि वसीयत कर सके, वला इला अहलीम यरजून, और ना ही उनको इतनी मोहलत मिलेगी कि अपने घर वालों की तरफ ही लौट सके। यानी इससे अंदाजा करें कि कितनी क्विक होगी ये, सारा कुछ कैसे खत्म हो जाएगा, यानी कितना फाइन लाइन पे ये सब चल रहा है, इससे अंदाजा होता है कि और कितना स्पीडी होगा, कितनी स्पीड होगी उसकी कि किसी को इतना भी नहीं टाइम मिलेगा कि कोई आखिरी वसीयत ही कर दे, कोई अपने दिल की बात ही कह दे, ना अपने घर वालों की तरफ लौटने का। यानी आप सोचें किसी जगह कोई जलजला अगर आ जाता है या कुछ होता है तो क्या होता है, इंसान फौरन, या इंसान का आखिरी वक्त ही आ रहा हो तो इंसान फौरन सबसे पहले अपने घर वालों को फोन उठा के करेगा, मैं तुम्हें ये नसीहत कर रहा हूँ, मेरी तरफ से खुदा हाफिज है, मेरे लिए फिर मिलेंगे, ये होगा वो होगा, सब इस तरह की बातें करता है। उसको इतना भी नहीं वक्त मिलेगा कि वो ऐसी कोई नसीहत कर सके, कोई बात कह सके। अल्लाह अकबर, सब आनन फानन खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते ना ये सूरह क़यामा, यस अलू अय्याना यौमुल क़यामा, ये पूछते हैं ना कि क़यामत कब आएगी, कब आएगा क़यामत का दिन। फ़ाइदा बरिक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिया अश्शम्सु वल क़मर। अल्लाह अकबर, जब दीदे पथरा जाएंगे और चांद बेनूर हो जाएगा और चांद और सूरज मिला के एक कर दिए जाएंगे। यकूलुल इंसानु यौमा इदिन, कहेगा इंसान उस दिन क्या कहेगा, ऐनल मफर, कहाँ है भागने की जगह, मैं किधर भाग जाऊं। हरगिज नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला अला वजर, हरगिज नहीं, अब नहीं कोई भागने की जगह, अब कोई कोई पनाहगाह है ही नहीं। इला रब्बी का यौमा इज़िन मुस्तकर, उस दिन अल्लाह ही की तरफ है लौटना, उस दिन वहीं जाके ठहरना होगा, उस दिन इंसान का अगला पिछला सब उसके सामने आ जाएगा। और बल इंसान वाला नफसी ही बसीरा वलो अलका माजीरा, इंसान खुद जानता है उसने क्या किया, चाहे वो कितनी माजरतें करता रहे, कितनी बातें करें, कितनी एक्सक्यूजेस दे, कितनी तावीलें करें, मेरे ये मेरा वो, आपको नहीं पता मैं कितनी बिजी हूं, आपको क्या पता हमारे कितने मसाइल हैं, आपको क्या पता हम क्या, ओ कितनी ही तुम एक्सक्यूजेस दो, तुम्हें खुद पता है। भले इंसान अला नफसी ही बसीरा, इंसान खुद जानता है वो क्या कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं खुश कैसे हो सकता हूं, मैं कैसे इत्मीनान से बैठ सकता हूं, कि जबकि इसराफील अलैहिस्सलाम ने सूर अपने मुंह में लिया हुआ और वो अर्श की तरफ आंख लगाए हुए, यानी अर्श की तरफ टकटकी बांधे हुए देख रहे हैं, यानी पलक भी नहीं झपकते कि ये ना हो कि अल्लाह का हुक्म आ जाए और देर हो जाए, वो अर्श की तरफ देख रहे हैं यानी कि कब हुक्म आएगा, और उनकी दोनों आंखें चमक रही हैं जैसे दो चमकते सितारे। इतने अलर्ट वो हैं जिन्होंने सूर फूंकना है, और जिनके लिए फूंका जाना है उनको होश ही नहीं। वो कहता है अभी कौन से साइंस पूरे हुए हैं क़यामत के। अल्लाह अकबर, यहां से पता चला कि क़यामत का दिन सरप्राइज होगा लोगों के लिए। ये जो कह देते ना 12-12-12 को क़यामत आनी है, फलाने दिन क़यामत आनी है, बड़ी बड़ी बातें सुनी इतने पिछले सालों के अंदर, अब उस दिन आनी है। जब लोग ऐसी बात कहते थे मैं कहती थी उस दिन तो यकीनन ही नहीं आएगी, क्योंकि इसका पता अल्लाह ने किसी को नहीं दिया हुआ, इन्हीं के कहनों के ऊपर आनी होती तो फिर तो क्या ही बात थी। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा सब कुछ। देखिए ना, अब वो कपड़ा बिछाया हुआ है, वो अपना हौज ठीक कर रहा है, वो निवाला खा रहा है, मतलब डेली लाइफ के अपने कामों में लोग मगन है, क्यों उस वक्त क्यामत आ जाएगी। क्यामत ऐसी अचानक है, क़यामत ऐसी क्विक होगी कि वसीयत करने का भी मौका नहीं किसी को मिलेगा, किसी को यानी इतनी बात कि वो एक लास्ट गुड बाय कह दे उसका भी नहीं मौका मिलेगा। जो मुजरिम होते हैं ना यहाँ पे, उनको भी थोड़ा टाइम दे दिया जाता है कि अपनी लास्ट जो अपनी ख्वाहिश है वो बता दो, वो अपनी बताते हैं, उसको भी थोड़ा मौका मिल जाता है। लेकिन इन इंसानों को तो इतना भी मौका नहीं मिलेगा कि ये कोई अपनी आखिरी बात ही अपने बीवी बच्चों से कह सके। और फूंका जाएगा सूर में। अब ये कौन सा है, अगर ये दो सूर लिए जाए तो पहला सूर क्या था, नफखाए उला, उस चीख से इंसान सब ढेर हो गए, बस इतना ही था इंसान का काम। ये देख लें जरा, ये इतनी की मार है हम, ये एक आवाज से इंसानों का ये हाल हो जाता। पिछली तो बस्ती का हाल आया, उस पे तो सूर भी नहीं फूंका गया, एक चीख ही थी। ये हमारे हालात हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ी चीजें समझते हैं ना, वो ये हैं। वो खामेदून हो गए थे, वो तो बुझ के ही रह गए थे एक चीख से। यहां पे भी देख लें कितने बड़े बड़े और कैसे कैसे ताकतवर इंसान होते हैं, और कितने मुतकब्बिर होते हैं, और कितनी बड़ी बड़ी इनकी बातें होती हैं, और अपनी अकलों के पर इनको कितना मान होता है। वो बस वो एक सूर की आवाज आई है और देर ही नहीं लगी, वहीं ढेर हो गए। जहां बैठे थे वहीं ढेर हो गए, निवाला भी नहीं मुंह में डाला। तो चलो कोई चीज होती है तो इंसान सोचता है कि ये खा तो लू, नहीं उसका भी टाइम नहीं है, उसका भी नहीं मिला। अपने घर वालों की तरफ पलट सकूं, उसका भी वक्त नहीं दिया गया। और फूंक दिया जाएगा सूर में तो फाइदा हम मिनल अजदासी ला रब्बिहिम सेलून, तो वो अपनी अजदास से निकलेंगे अपने रब की तरफ तेजी से चलते हुए। अच्छा, ये अब जो लफ्ज है ना अजदास का आया, मैंने आपको इसका तर्जमा बताया कि अपनी कब्रों से। कब्र के लिए अरबी में कब्र का भी लफ्ज है, अजदास का भी लफ्ज है, और मरकद का भी है, आगे मरकद आ रहा है। लेकिन यहां पे हम दुआ करते ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, तो कब्र तो अरबी का ही लफ्ज है। यहां पे कब्र नहीं आया, कुबूर आ जाता, अजदास क्यों आया? क्या फर्क है जदस और कब्र में? सुभान अल्लाह, जब मैं इसकी रिसर्च कर रही थी सारी, तो इसके जो माने निकले, जदस कहते हैं घोड़ों की टापों की आवाज जो होती है, घोड़े जब चलते हैं ना तो उसकी, बहुत सारे घोड़े चल रहे हैं तो टक 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 आवाज आती। जब कब्रों से निकलेंगे, इतनी मखलूक निकलेगी, जब वो चलेगी तो उस आवाज को बताना मकसूद है। ठीक है, वो कब्रों से निकलेंगे और ऐसे चलेंगे अपने रब की तरफ। नंबर टू बात, जैसे मार्च करने की आवाज होती है, तो जब अरबों खरबों लोग चल रहे होंगे आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी तक, तो कितनी आवाज होगी, कैसी होगी? फिर दूसरा, जदस इतनी जबरदस्त बात इसमें है कि वो कब्रें जो बगैर निशानों के हों, चाहे वो पुरानी हो गई हैं, आप देखें कई पुरानी कब्रें जब हो जाती हैं वो तो बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं, उनके ऊपर बिल्डिंग्स बन जाती, बल्कि कई जगह खुदाई की गई, पता चला ओ हो इसके नीचे तो वो कब्रिस्तान था पूरा, तो निशान मिट चुके, खत्म हो गए, लोगों को ये भी नहीं पता कि ये कोई कब्रिस्तान है, यहां पे कोई कब्र है। तो पुरानी होने की वजह से बेनामो निशान हो गई। या फिर देखें वो लोग जो समुद्रों में गर्क हो गए, समुंदर उनकी कब्र बन गए, कई जानवरों के पेट में चले गए, जानवरों के पेट उनकी कब्र ही बन गए ना, और जहां जहां पे रुल गए, मिट गए, खत्म हो गए, फिर उनकी कब्रें में मिट गए, निशान खत्म हो गए उनकी कब्रों के ऊपर सड़कें बन गई, कब्रों के ऊपर बिल्डिंग्स बन गई, कोई निशान ही नहीं रहा। तो अजदास हर तरह की कब्र के लिए आता है, वो कब्र जिस पे निशान हो और वो कब्र भी जो बेनिशान हो, यानी भूली बसली कब्रें, या फिर वो जिनके ऊपर जिनका कोई अता पता नहीं है। अल्लाह ताला सबको निकालेगा, चाहे उसकी कब्रों के निशान मिटे हुए हैं, चाहे वो जानवरों के पेटों में है, चाहे उनके ऊपर बिल्डिंग्स खड़ी हो गई थी, अब वो नीचे पड़े हुए हैं, अब हाई राइज बिल्डिंग बन चुकी है उसकी कब्र के ऊपर, वो कहां से निकलेगा? वो तो सब कुछ खत्म हो चुका, सब जब जलजलाए कयामत आया तो सब खत्म हो गया, वो वहीं से निकलेगा। बेनामो निशान कब्रों से भी अल्लाह लोगों को खड़ा करेगा, ये मतलब है। जिनको हम समझते हैं कब्रें, ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान है, यहां से ही पता नहीं लोगों ने सिर्फ उठना है, नहीं, वहां वहां से उठेंगे जहां का लोगों को पता ही नहीं है। बेनामो निशान कब्रें, अल्लाह को वो नहीं भूले, अल्लाह को वो लोग नहीं भूले जो कि उन कब्रों में जो बेनामो निशान है। अल्लाह को पता है कि यहां पे भी है कोई पड़ा हुआ, यहां पे भी कोई पड़ा हुआ, कोई रह नहीं जाएगा, सब उठेंगे, इरेज्ड कब्रों से भी उठेंगे। अल्लाह जानता है, चाहे हम इंसानों को पता ही ना हो। और सिर्फ जिंदा नहीं किए जाएंगे कि जिंदा करके बस खड़े हो गए, बल्कि वो चल पड़ेंगे, और चलेंगे भी कैसे? स्लोली नहीं चलेंगे, सुस्ती से नहीं चलेंगे। अब हमें कोई बेड से उठा दे सुबह को तो पहले तो हम सुस्ती में थोड़ा टाइम बैठे रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठ के चलते हैं कि अभी तो हमारी आंखें भी मलते मलते अभी तो नींद भी नहीं सही तरह से गायब हुई, तो अभी हम इतनी तेज तो नहीं चल सकते थे कि हमें बिस्तर से उठा के कोई भगाना शुरू कर दे। लेकिन ये क्या होगा, ये जब उठेंगे ना पुरानी कब्रों से भी, बेनामो निशान कब्रों से भी, बुसीदा हो चुकी हैं वो भी, जिनकी जिनकी खाक बन चुकी जिस्मों की, और वो खाक भी उड़ के कहीं बिखर चुकी, उसके जर्रे भी बिखर चुके, वो भी उठेंगे और वो उठ के चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। नस्ल कहते हैं, नस्लें कहते हैं, नस्लें इंसानी ऊपर से नीचे जो भी प्रोजनी इंसान की होती है, जनरेशन होती है, तो ये ऐसे होंगे ऊपर से नीचे जैसे आ रहे हैं, यानी इतनी तेज दौड़ेंगे। इसमें ये एक इशारा भी है कि देखें जब इंसान ऊंचाई से उतराई की तरफ आ रहा होता है ना, तो उसका कंट्रोल नहीं होता अपने आप के ऊपर। जैसे आप स्लोप से उतरते हैं, अब आप अपनी स्पीड को नहीं कंट्रोल कर पाते, आपके पैर भागते जाते हैं आगे, ये भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, हम इधर को जाएं या इधर, वो उस डायरेक्शन में उनको जाना ही पड़ेगा अल्लाह की तरफ, इला रब्बिहिम, उनके रब की तरफ उनको जाना है आज। क्या वो दिन होगा जिस दिन सारी मखलूक उठ के इस तरह से चल पड़ेगी अपनी कब्रों से? क्या वो दिन होगा जिस दिन लोग अल्लाह की तरफ भागे जा रहे हैं, जिस अल्लाह से वो भागते थे? ऐन अल मफर, कहाँ है फरार की जगह? अल्लाह ताला कहेगा आज कोई फरार नहीं है, आज कहीं नहीं भाग सकते, आज कोई पनाहगाह नहीं है, आज कहीं छुपने की जगह नहीं है। कोई ये नहीं रह सकता कि उसकी कब्र पुरानी हो गई, वो इसको तो भूल ही गए, इसको तो निकालना भूल ही गए। हमें बहुत सारी चीजें होती हैं ना, हम घर में एक दावत भी रखी हो, बहुत सारी डिशेस होती हैं, एक डिश भूल ही जाते हैं निकालना, खुद ही बनाई होती है और है ये याद ही नहीं रही निकालने। अल्लाह ताला भूलता नहीं है, कोई एक इंसान भी भूले से पड़ा नहीं रह जाएगा कबर में, सब निकलोगे। तुम सोचते हो अल्लाह कैसे जिंदा करेगा, ये सोचते हो? अल्लाह तो अजदास में से भी निकालने लगा लोगों को, ये बताया गया। तुम सोचते हो कैसे आएगी क्यामत? वो तो तुम्हें क्यामत की डिटेल्स बता रहा है, एक एक बात बता रहा है। तुम क्या बात करते हो कैसे आएगी, कब आएगी, क्यों आएगी, क्या होगा, एक एक डिटेल जैसे कि सामने पिक्चर आ गई। और देखें यहां पे जो लफ्ज आया है सुभान अल्लाह, इस पे गौर करें, वह नुफिका, नुफिका माजी है, पास्ट है, फूंक दिया गया सूर, अभी तो फूंका नहीं गया, माजी क्यों आया फिर? इसलिए कि ये समझ लो कि जैसे कि हो चुका ये इट्स सो सर्टन, इतना श्योरली ये होना है, इतना यकीनी बात है ये, कि ये समझ लो हो चुकी, क्योंकि जो बात पास्ट में हो चुकी होती है उस पर कोई डाउट नहीं करता। भाई हम कहेंगे कल मैंने ये खाया था, तो अब इसके ऊपर शक थोड़ी करेंगे, क्योंकि वो तो हो चुकी बात, खाऊंगी वो हो सकता है कि खाया जाए या नहीं जाए, लेकिन जो हो चुका उस पे नहीं शक। ये समझ लो ऐसे है कि हो चुका, ये इतना यकीनी है कि ऐसा होना है। कालू वो कहेंगे आगे से ये लोग जब उठेंगे कब्रों से, या वैलना, हाय अफसोस हम पर, मम बाथना में मरकदीना, किसने हमें उठा दिया हमारी रेस्ट की जगह से। मरकद कहते हैं वो जगह जहां पे इंसान थोड़ी देर के लिए रेस्ट करे, थोड़ी देर के लिए सो जाए, रिलैक्स करे, जहां पे वो कह रहे हैं हम रेस्ट की जगह से क्यों उठा दिया, जबकि हमारा ईमान है कि जो गुनाहगार हैं उनको उनकी कब्रों में भी अजाब होता है। बेनमाजी है उसकी कब्र का अजाब बताया गया, फिर इसी तरह जो और कोई गलत कारियां कीमियां उसमें कब्र के अजाब बताए गए, काफिर है उसके लिए कब्र के अजाब बताए गए। तो ये कह रहे हैं हम रेस्टिंग की प्लेस में थे, ऐसा क्यों कहेंगे? इस वजह से कहेंगे कि जब वो क़यामत के दिन की खौफ और दहशत को देखेंगे, और ये चीज के हम जा किधर को रहे हैं, अब अल्लाह के सामने हमारी हाजिरी होने वाली है, अल्लाह हमसे अब पूछेगा, जब वो ये रियलाइज कर लेंगे कि आगे पड़ा क्या हुआ है हमारे लिए, हमारा अंजाम होने क्या वाला है, तब उनको ये लगेगा कि वो तो हमारी बड़ी अच्छी जगह थी जहां पे हम थे। ये ऐसे ही है, मसला नहीं कि हम अंदर बैठे हुए, बिजली चली जाती अगर, और गर्मी बहुत होती है, ना एसी चल रहा ना पंखा, तो हम इतना वावेला करते हैं, हाय गर्मी हाय। लेकिन 105 डिग्रीज पे हमें बाहर ले जाके नंगे पैर खड़ा कर दिया जाए धूप में, तो हम कहेंगे हाय हाय हमें अंदर ले जाओ, हमें अंदर ले जाओ, हम वहां पे ही बड़े अच्छे थे, वहां पे तो हमें सुकून था, ये हम तो कितनी गर्मी में। यानी उनको वो क्या लगेगा, मरकद लगेगी। दिस इज सो अमेजिंग कि इससे हमें पता चलता है कि उस दिन कयामत के दिन की सख्ती जो होगी वो कितनी शदीद होगी कि कब्र का अजाब भी उससे कई गुना हल्का लगेगा। वो तो लगेगा वो तो कुछ था ही नहीं, वहां पे तो मैं रेस्ट कर रही थी। अल्लाह अकबर, यानी किस कदर ज्यादा परेशानी का आलम होगा, कितनी ज्यादा तकलीफ का आलम होगा। और क्या वो रियलाइज कर रहे होंगे अपने सामने कि जो हमने किया अब बचना नहीं, हमने अब अल्लाह के सामने हमारी हाजिरी होने वाली। इससे हमें इतनी, ये इतनी पावरफुल बात है ना कि इससे ही हमें सिर्फ इतनी बात पढ़ के अंदाजा हो जाता है। हम कहते हैं ना अल्लाह कब्र के अजाब से बचाना, कब्र का अजाब क्या चीज है जो उस दिन, अभी हिसाब किताब नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो जा रहे हैं, अभी तो कब्रों से निकले। सोचे उस दिन की इंटेंसिटी क्या होगी, सोचें कि उस दिन की परेशानी का हाल क्या होगा, और कैसी इंसान के ऊपर वहशत तारी होगी, और कितना खौफ होगा कि वो कहेगा वो तो मेरी मरकत थी, मुझे मेरी मरकत से किसने उठा दिया। कयामत के मरहले कितने मुश्किल होंगे इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और इससे सबको गुजरना है, सबको गुजरना है, कितने ही नाजुक मिजाज क्यों ना हो, कितने ही कैसे क्यों ना हो, सब इससे गुजरेंगे। कितना शदीद होगा ये दिन। कल जब मैं ये आयात पढ़ रही थी तो मुझे, अरे देखे सुभान अल्लाह, इंसान है हम सारे, अरे इतने अरसे से मैं पढ़ा भी रही हूँ, ऐसे नहीं कि कोई फर्स्ट टाइम ये आयात पढ़ी थी, या ऐसे नहीं कि मुझे क्यामत के दिन का नहीं पता कि क्या है, लेकिन उस इसका जो इम्पैक्ट था ना, कि मुझे लग रहा था कि सब कुछ छोड़ के बस मैं इसी की तैयारी में लग जाऊं, कि कितना मुश्किल है वो वक्त ये जब हम कब्र के अजाब पढ़ते हैं तो हम डर जाते हैं। वो दिन कैसा होगा कि कब्र भी राहत लगने लगे, कब्र भी सुकून की जगह लगने लगे, वो भी मरकद कहला रही है, इसलिए कि पता है आगे क्या है, कितनी खौफनाक चीज है। हाज़ा मा वादा रहमान व सदकल मुरसलून। फिर खुद ही कहेंगे, या तो ये ईमान वाले उनको कहेंगे यही तो था जिसका रहमान ने वादा किया था, और रसूल जिनको तुम झुटलाते थे उनने सच ही तो कहा था, तुम कहते थे हमने नहीं मानी, यही तो कहते थे रसूल, उन्होंने सच बताया था तुम्हें। तो या तो ईमान वाले कहेंगे या फरिश्ते कहेंगे, या ये भी आता है कि खुद ही कहेंगे, खुद कहेंगे अपने आप से कि ओहो यही तो था जिसका रहमान ने हमसे वादा किया। और देख रहे हैं बार बार इस सूरत में रहमान रहमान की तकरार हो रही है, रहमान का लफ्ज बार बार आ रहा है, तो ये नहीं कहेंगे ये वादा है जो अल्लाह ने किया था, इसी जगह वो कहेंगे रहमान ने किया था, कि वो तो कितना रहम करने वाला था कि उसने तो हमें बता दिया था, उसने ये वादा दिया था हमें, उसने हमें याद करवाया था, उसकी कितनी बड़ी रहमत थी कि दुनिया में उसने हमें बता दी थी ये बात, ये इसका वादा किया था उसने कि ये होगा, ये तो वो हो गया, ये तो हो गया। हम ये बैठे क्लासों के अंदर बातें कर रहे हैं, क्लास में करना और दर्स में करना बहुत आसान है, बोलने वाले के लिए भी सुनने वाले के लिए, हाँ जी आएगा देखी जाएगी क्या है। सोचिए उस दिन का अगर इंसान इमेजिन करे ना, रोंगटे खड़े हो जाते कि क्या दिलों का बोलना, और इससे बचने की कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। वो सदकल मुरसलून, रसूलों ने भी हमसे सच कहा था, हम उनको झुटलाते थे, हमको उनको कहते थे कि आप गलत कह रहे, रब ने कुछ, रहमान ने कुछ नहीं नाजिल किया, उन्होंने भी सच कहा था। इससे पता चला कि आखरत में इंसान को वाकई रियलाइज हो जाएगा कि अल्लाह की बातें, अल्लाह के वादे कैसे थे, और रसूलों की बात कितनी सच्ची थी। यहां पे तो इंसान इग्नोर कर देता है अल्लाह के वादों को, जब अल्लाह ताला फरमाता है ये अल्लाह का वादा है कि कयामत आएगी, ये अल्लाह का वादा है, हमने पढ़ा है ना पहले, अब मैंने आपको बताया था अल्लाह को अहद करने की जरूरत नहीं, वादा कर, लेकिन अल्लाह ताला ने वादा करके बताया, कसम खा के बताया कि ये जरूर आएगी, वहां जाके सही समझ आ जानी कि हाँ वाकई वो सारी बातें सच्ची। रसूलों ने जितनी बात कही थी ऐसा होगा वो, ये तो वाकई वो हो गया। हम यहाँ पे किन चीजों के अंदर अपने आप को घुलाते हैं, परेशान करते हैं छोटी छोटी बातों पे, और हमें आखिरत भूली भी है। हम कितने गम हैं जो पाले रखते हैं, कितनी छोटी छोटी बातों के ऊपर हम टेंशन लेके डिप्रेशन का शिकार हो जाते। जरा सी तंगी आती, जरा सी मुश्किल आती है तो कहते हैं बस खत्म ये जिंदगी और सब कुछ। सोचना है तो इस दिन का सोच, तब क्या होगा। और ये देखे भाग रहे हैं लोग और साथ कह रहे हैं हाय हाय हमें किसने निकाल दिया, हाय अफसोस हम पे, या वहील ना, यानी अब वहील का लफ्ज है ना, यही हमारी हलाकत हो, अपने आप को कर्ज करेंगे। भागते जा रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे जंगल में आपने देखा हिरन वगैरह भागते हैं, जब उनके पीछे शेर होता है कैसे भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने को, मगर यहां पे जान बचाई नहीं जाएगी। याद रखें कि एक दफा यहां की सरहद पार कर गए ना, हर मरहला ही मुश्किल है। हमने क्या समझा हुआ मौत मुश्किल है, वो मरना भी मुश्किल, कब्र भी मुश्किल, उसके अगले मरहले भी मुश्किल। सारी जिंदगी की तकलीफें और दुख हम इकट्ठे कर लें और मौत की सख्ती कोई सिर्फ सोच लें तो मौत की सख्ती उससे ज्यादा है, अगले मरहले तो और भी ज्यादा है। कानत इल्ला सैहत वाहिदा, नहीं होगा मगर ये एक ही सैहा, एक ही चीख होगी। फ़ाइदा हुम जमीउन लदैना मुहदरून, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसी वक्त फ़ाइज़ा ऑल ऑफ अ सडन, ये अचानक से यानी एट द मोमेंट, उस वक्त हम वो जमीउन सब के सब, कोई एक भी मिसिंग नहीं होगा। लदैना हमारे पास, इंदना नहीं फरमाया, इंदना भी हमारे पास होता, लदईना फरमाया, इसलिए कि इंदना और लदईना में फर्क है। इंदना में और क्या फर्क है इसमें, कोई चीज के आप मालिक हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं वो चीज आपके पास हो। मतलब ना एक घर की मैं मालिक हूं और मैं उसको किराए पे दे देती हूं, अब वो घर में, मैं उस घर के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मैंने किसी को दिया वो घर, लेकिन ओनर मैं हूं लेकिन वो मेरे पास नहीं है। लदईना क्या हुआ कि वो घर में ओनर भी हूं और वो मेरे पास है, मेरी मैं जब चाहूं उसके अंदर चली जाऊं, मेरे करीब है, कोई चीज मेरी हो सकती है मगर इस वक्त वो मेरे से दूर हो सकती। लदैना और इंदना में यही फर्क है, इंदना में ओनरशिप तो होती है, मिल्कियत तो होती है, जरूरी नहीं वो आपके पास हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन इंदना नहीं लदैना, हम इनके ओनर भी हैं और ये हमारे सामने भी हैं, हमारे पास भी हैं, खड़े होंगे उस वक्त वहां पे, हाजिर किए जाने वाले अल्लाह की अदालत में, जैसे मुजरिमों को लेके हाजिर किया जाता है। इस दिन जितना मर्जी भाग लो अल्लाह से, किधर भाग के जाओगे, उस दिन तो हाजिर किया ही जाना है, उस दिन तो कोई भागने की जगह नहीं है। अब ये पेशी तो भुगतनी ही होगी, मेरे तो टांगे कांप जाती हैं, यहाँ पे जरा सा कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोई टिकट मिल जाए तो तब टांगे कांप जाती है कि हाय एक कोर्ट के अंदर जाए, एक कोर्ट का माहौल, एक जज बैठा, और यहां पे किसी को नहीं भेज सकते कि जाओ मेरा वकील जाके अभी मेरी ये पेशी भुगता है, मैं नहीं आ जा सकती, नहीं खुद पेश होना पड़ेगा। और चाहे पेश होना नहीं भी चाहे, मुहदरून हाजिर किए जाएंगे, तब पता चलेगा कि दुनिया की जिंदगी की हकीकत क्या थी, तब सब सब याद आ जाएगा, तब सब प्रायोरिटीज पता चल जाएंगी, किस चीज की प्रायोरिटी थी और किसको हमने पीछे छोड़ा, तब इंसान के सामने हकीकत बिल्कुल खुल जाएगी। ये आज हम कितने भी लेक्चर सुन लें, कितनी भी बातें करते रहें, लेकिन ये उस तरह से हम रियलाइज नहीं कर पाते, अभी भी हमारी प्रायोरिटीज वो नहीं है जो होनी चाहिए। लेकिन जिस दिन वहां खड़े हो जाएंगे ना, सब सब पता चल जाएगा, इसके साथ क्या किया, मैंने कितनी ज्यादती की, उसने क्या किया था, सब समझ आ जाएगी। उस दिन एक्सक्यूजेस नहीं होंगे, उस दिन बिल्कुल समझ होगी कि हाँ मैंने ज्यादती की थी, मैंने ये गलत किया था। फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैया, उस दिन नहीं, फल यौम आज के दिन, अल्लाह ताला ने जो लफ्ज यहाँ पे फरमाया आज के दिन का मतलब क्या है, यानी तुम इमेजिन करो कि आज तुम वहां पे खड़े हुए, तुम पिक्चर करो अपने जहन के अंदर कि इट्स टुडे, वो दिन नहीं आज तुम सोचो कि मैं आज वहां पे खड़ा हूं। और ये सोचो कि अब कोई जुल्म नहीं होगा किसी नफ्स पे कुछ भी, वला तुजाऊ ना इल्ला मा कुंतुम तअमलून, और तुम्हें वही बदला दिया जाएगा जो तुम अमल करते रहे, उसके सिवा कुछ नहीं दिया जाएगा। जितना तुमने किया, जैसा तुमने किया, उसके मुताबिक ही बदला होगा। जो तुमने बोया वो ही काटोगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कांटे बो और वहां पे जाके गंदुम काटो, ऐसा नहीं होने वाला। जो तुमने बोया था उसी को काट काट के लेके जाओगे। अल्लाह ताला फरमाता है ना सूरह कलम में कि क्या हम मुजरिम और मुस्लिम को बराबर कर देंगे? ऐसे कैसे हो, कैसी बातें तुम करते हो? तुमने किस किताब में ये पढ़ा है? कौन सा हमने तुम्हें ये वादा दिया है जो तुम ये लेकर आओगे कि हमने तुम्हारे से वादा किया हुआ कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे? किधर से तुम फैसले करते हो? तुम ये सोचते हो कि फरमा बरदारी करो या ना फरमानी करो, एक बराबर हो जाएगा? तुम ये सोचते हो कि नेकियां करो या ना करो, गुनाहों में पड़े रहो, एक बराबर हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। उस दिन किसी पे जुल्म नहीं होगा। जुल्म ये भी होता है कि सारी जिंदगी नेकी करते रहे, वहां पे जाके किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया, किसी को पता ही नहीं चला, जैसे यहाँ पे जुल्म हो जाते हैं इस किस्म के। जुल्म ये भी है कि कुछ भी नहीं किया था, गुनाह किया नहीं था, और उसको धर लिया गया किसी और के बदले में, पकड़ इसको लिया गया, ये भी नहीं होगा। जो तुमने इन्वेस्टमेंट की होगी ना वही मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है क्या, पहले ये देखो। इसके बाद जो मैंने ईशा की नमाज पढ़ी वो बड़ी फर्क थी, इसलिए कि फिर मैंने सोचा कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये वाली मेरी नमाज है जिसका मुझे, मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे कैसा बदला मिले, मुझे इस नमाज के कैसा रिवॉर्ड चाहिए, वो नमाज ही बदल गई थी। तो हमें, हम सबको रिमाइंडर्स चाहिए, चाहे हम कितने भी आखरत को जानते हैं, सब हमने पढ़ा हुआ है, कितनी दफा भी हमने पढ़ा, अल्लाह को पता है कि इंसान भूल जाता है, अल्लाह को पता है, इसको रिमाइंडर चाहिए। हम सबको रिमाइंडर चाहिए। जितनी जितनी दफा हम आखिरत के हालात को देखेंगे वो हमारे ऊपर एक और तरह से इम्पैक्ट हर दफा करेंगे। इससे इन बातों को ये ना सोचे हम सब जानते हैं, हमसे सब पता है, हमने इतनी किताबें पढ़ी हैं, हमने बड़ी दफा कुरान पढ़े, 100 दफा भी आपने पढ़ा हो तब भी हमें उतनी ही जरूरत है। अल्लाह ताला इन बातों को हमारे लिए असासा बना दे कि हम इनके मुताबिक चलने वाले बने और इनको याद रखने वाले बने और इनके जरिए अपने अमल को बदलने वाले बने। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तिलावत सुने।
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون